नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत के लिए उत्सुकता व्यक्त की। नेपाल में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों ने सेना प्रमुख से सैन्य अड्डे पर मुलाकात कर अपने मुद्दे उनके समक्ष रखे। इजरायली सेना ने कतर की राजधानी दोहा में शीर्ष हमास नेताओं पर हत्या के प्रयास की पुष्टि की। और एशिया कप क्रिकेट में अफगानिस्तान ने उद्घाटन मैच में हांगकांग को 94 रनों से हराया। भारत का सामना आज मेजबान यूएई से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और अमरीका करीबी दोस्त और स्वाभाविक साझेदार हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता से भारत अमरीकी साझेदारी की असीम संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के दल वार्ता को जल्द से जल्द निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उज्ज्वल और अधिक समृद्ध भविष्य के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मिलकर काम करने की आशा प्रकट की। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत के साथ व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रहेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट में श्री ट्रंप ने आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुकता प्रकट की। राष्ट्रपति ट्रंप ने आशा व्यक्त की है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। नेपाल में आंदोलनकारी युवाओं और सेना के बीच मध्यरात्रि में जंगी अड्डा स्थित सैन्य मुख्यालय में बातचीत हुई। सूत्रों के अनुसार आंदोलनकारी युवाओं के विभिन्न समूहों के प्रतिनिधियों ने देर रात सेना प्रमुख अशोक राज सिग्डेल से मुलाकात की और अपने मुद्दे उनके समक्ष रखे। सेना के वरिष्ठ अधिकारी ने इसे किसी औपचारिक वार्ता की जगह युवाओं के विचारों को समझने का प्रारंभिक प्रयास बताया। एक रिपोर्ट।
सेना ने देश में सुरक्षा की वर्तमान चुनौतियों को देखते हुए विशेष प्रबंध शुरू कर दिए हैं। सेना ने सभी समुदायों से लूटपाट, आगजनी और उपद्रवी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए सक्रियता से सहयोग करने की अपील की है। सेना के अनुसार काठमांडू के बानेश्वर में राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक में लूटपाट की घटना में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। भाट भटेनी सुपरमार्केट, होटल हयात और बौद्ध क्षेत्रों सहित काठमांडू और भक्तपुर के अलग अलग इलाकों में लूटपाट की घटनाओं में शामिल 21 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। वे लोग मौके का गलत तरीके से फायदा उठा रहे थे। नेपाल से श्वेता सिंह की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए मैं मुकेश कुमार बल।
प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के घटनाक्रम पर चर्चा के लिए कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नेपाल में हिंसा हृदय विदारक है। उन्होंने नेपाल में युवाओं की जान हानि पर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि नेपाल में स्थिरता, शांति और समृद्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने नेपाल के लोगों से शांति के प्रयास को समर्थन देने की अपील की। एयर इंडिया और इंडिगो सहित कई एयरलाइनों ने कल काठमांडू जाने वाली अपनी उड़ानें रद्द कर दी। नेपाल की राजधानी में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शन के बीच हवाई अड्डा अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। नेपाल एयरलाइंस ने भी कल दिल्ली से काठमांडू जाने वाली अपनी उड़ान रद्द कर दी थी। इस बीच सरकार ने भारतीय नागरिकों को स्थिति ठीक होने तक नेपाल की यात्रा न करने की सलाह दी है। किसी भी सहायता के लिए सरकार ने काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। नंबर है 9779806028 और 9779803261314। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। इसराइल की सेना ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के प्रमुख नेताओं को निशाना बनाकर किए गए हवाई हमले की पुष्टि की है। इसराइली रक्षा बल और इसराइल की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिनबेट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। कतर की धरती पर इसराइल की ये पहली सैन्य कार्रवाई है। भारत ने दोहा में इसराइली हमलों के बाद चिंता व्यक्त करते हुए संयम बरतने और कूटनीति से काम लेने का आह्वान किया है। इस बीच अमरीका ने कहा है कि दोहा में इसराइली अभियान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा में शांति स्थापित करने के प्रयासों के विपरीत है। मीडिया को जानकारी देते हुए व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलीन लेविट ने हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
unilaterally bombing inside Qatar, a sovereign nation and close ally of the United States that is working very hard and bravely taking risks with us to broker peace, does not advance Israel or America's goals. However, eliminating Hamas, who have profited off the misery of those living in Gaza, is a worthy goal.
यूक्रेन द्वारा हवाई क्षेत्र में ड्रोन की चेतावनी के बाद पोलैंड ने अपने 4 हवाई अड्डे बंद कर दिए। पोलैंड के सशस्त्र बलों के ऑपरेशनल कमांडर ने कहा कि हवाई क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय शुरू कर दिए गए हैं। हवाई अड्डों को बंद करने की कार्रवाई पोलैंड सीमा के पास यूक्रेनी शहरों पर रूस के ड्रोन हमले शुरू करने के बाद की गई है। पोलैंड और नाटो विमानों को तैनात किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि सुबह हवाई क्षेत्र में परिचालन शुरू कर दिया गया। ईरान और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ईरानी संप्रभुता का सम्मान करते हुए और ईरानी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अपने सहयोग को बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची ने ये बात दोहराते हुए कहा कि ईरान अपनी परमाणु नीति या अधिकारों से फिर कभी समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कल मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देल्ती और IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रासी के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा की। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए व्यापक वैश्विक टैरिफ पर दलीलें सुनने के लिए सहमत हो गई है। अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान टैरिफ लागू रहेंगे। ये मामला अगस्त के अंत में वाशिंगटन की संघीय अपील अदालत के विभाजित फैसले के बाद आया है। फैसले में पाया गया था कि ट्रंप ने टैरिफ लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम का सहारा लेकर अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच में अफगानिस्तान ने कल रात अबू धाबी में हांगकांग पर 94 रनों की विशाल जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट पर 188 रन बनाए। जवाब में हांगकांग 20 ओवरों में 9 विकेट पर 94 रन ही बना सका। प्रतियोगिता में आज भारत का सामना मेजबान संयुक्त अरब अमीरात से होगा। उधर एशियाई कप 2026 में भारतीय फुटबॉल टीम ने दोहा में ब्रुनेई को 6-0 से हराकर अपने U23 क्वालिफायर अभियान का समापन किया। भारत 3 मैचों में 6 के साथ ग्रुप एच में दूसरे स्थान पर रहा। वहीं मुक्केबाजी में भारत की निखत जरीन और मीनाक्षी लिवरपूल में विश्व चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। दो बार की विश्व चैंपियन निखत ने महिलाओं के 51 किलोग्राम वर्ग में जापान की युमा निशिनाका को 5-0 से हराया।
बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने कहा है कि पूरे बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ प्रांत के लोगों का एक बड़ा विद्रोह शुरू हो गया है। मीर यार बलूच के अनुसार विरोध की ये लहर आतंकवादी संगठन ISI के विरोध में भड़की है। ISI ने 2 सितंबर को क्वेटा में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी BNP की रैली पर आत्मघाती हमला करवाया था, जिसमें 15 बलूच लोग मारे गए थे और 35 अन्य घायल हो गए थे। पाकिस्तानी अधिकारी निजी विदेशी कंपनियों से प्राप्त व्यापक निगरानी उपकरणों के माध्यम से पत्रकारों और प्रमुख राजनेताओं सहित लाखों नागरिकों की जासूसी कर रहे हैं। शेंडोज ऑफ कंट्रोल सेंसरशिप एंड मास सर्वेलेंस इन पाकिस्तान शीर्षक वाली रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान का बढ़ता निगरानी नेटवर्क चीनी और पश्चिमी दोनों तकनीकों का उपयोग करके विकसित किया गया है। भारत और श्रीलंका ने मन्नार के जिला सामान्य अस्पताल में दुर्घटना और आपातकालीन इकाई के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसके लिए भारत ने 600 मिलियन श्रीलंकाई रुपए का अनुदान दिया है। MOU पर भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा और स्वास्थ्य सचिव डॉ. अनिल जसिंगे ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ. नलिंदा जयसिका की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। इस परियोजना में 2 मंजिला इकाई का निर्माण और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति होगी, जो आपातकालीन देखभाल में एक महत्वपूर्ण कमी को पूरा करेगी। इससे समय पर इलाज और अस्पताल में भीड़भाड़ कम होने से जान बचने की उम्मीद है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत के लिए उत्सुकता व्यक्त की। नेपाल में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों ने सेना प्रमुख से सैन्य अड्डे पर मुलाकात कर अपने मुद्दे उनके समक्ष रखे। इजरायली सेना ने खतर की राजधानी दोहा में शीर्ष हमास नेताओं पर हत्या के प्रयास की पुष्टि की। और एशिया कप क्रिकेट में अफगानिस्तान ने उद्घाटन मैच में हांगकांग को 94 रनों से हराया। भारत का सामना आज मेजबान UAE से। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।